असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। करण बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आपसे आज अमृतवाणी का पाठ सुना है, बहुत सुंदर। परमेश्वर कृपा बेटा सब पर, आप पर बनी रहे। अभी आपने सबने मिल के बहुत प्रेम पूर्वक श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया है। ये दास आप सबसे अरदास करता है, इसका पुण्य पाठ रोज सुबह शाम जरूर करते रहा कीजिएगा। मांगलिक है, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, परमेश्वर की कृपा का व्यक्ति पात्र बन जाता है, परमेश्वर के प्यार का पात्र बन जाता है। स्वामी जी महाराज के अपने श्रीमुख वाक्य हैं, जिस प्रकार अमृतवाणी पाठ से मुझे परमात्मा ने अपनी कृपा का पात्र बनाया है, मुझे पूरा यकीन है कि वह हर एक को अपनी कृपा का पुण्य पात्र बना सकता है, बनाता है, बशर्ते कि आप भी इसका प्रेम पूर्वक पाठ रोज दिन में दो बार करते रहें, अधिक बार भी कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा, ऐसा नहीं कहा कि खाली पेट इसका पाठ करना है, नहा के इसका पाठ करना है, इत्यादि इत्यादि। दिन में किसी वक्त भी कर लीजिएगा, रात को सोते वक्त कर लीजिएगा, आप बाथरूम में नहा धो रहे हैं उस वक्त भी आप पाठ कर सकते हैं, स्वामी जी महाराज की तरफ से बिल्कुल कोई मनाही नहीं। एक बार करें, दो बार करें, अनेक बार करें, स्वामी जी महाराज ने लिखा है, इस विश्वास से पाठ करना चाहिए। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रवाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। ये स्वामी जी महाराज के अपने शब्द हैं, अपने अनुभव के शब्द हैं, अतएव इस विश्वास से पाठ करना चाहिए। अगला पद देखिए, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, निस्संदेह निश्चय निस्तार होके रहेगा। सारी अमृतवाणी में से इन दो पदों पर यदि आप अपना अटल अविचल विश्वास रख के देवी पाठ करते हैं, तो मुझे कोई संदेह नहीं, जो स्वामी जी महाराज ने कहा है वह बिल्कुल सत्य है। हम सब परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाएंगे, हम सब परमात्मा के प्यार के पात्र बन जाएंगे। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। परमात्मा की अपार कृपा है देवी और सज्जनों हम सब पर। तो कोई पंखा वंखा बंद करने की जरूरत हो तो बंद कर दें, ताकि आवाज सबको ठीक सुनाई दे, क्लियर सुनाई दे। कोई एग्जॉस्ट वगैरह कुछ चल रहे हो, बंद करने की जरूरत हो तो कर दीजिएगा। परमात्मा की अपार कृपा है देवी और सज्जनों हम सब पर। हम परमात्मा के विश्वासी हैं, आस्तिक हैं, जन्म से ही हम धार्मिक हैं। हिंदू मंदिर में जाता है अपने धर्म के अनुसार, सिख भाई गुरुद्वारे में जाते हैं अपने धर्म के अनुसार, ईसाई लोग चर्च में जाते हैं अपने धर्म के अनुसार, मुस्लिम बंधु मस्जिद में जाते हैं अपने धर्म के अनुसार। मानो हम सब धार्मिक हैं, जन्म से ही धार्मिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धार्मिक तो हैं देवी और सज्जनों हम सब, इसलिए तो यहाँ आए हैं, इसलिए तो मंदिर में जाते हैं, इसलिए तो अमृतवाणी का पाठ करते हैं, श्री रामायण जी पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब बातें हमारे धार्मिक होने के ही संकेत करते हैं। हम सब धार्मिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सुबह सुबह आप मंदिर जाती हैं, अपने हाथ में कुछ फूल फल इत्यादि लिए होते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए, और फिर प्रसाद प्राप्त करने के लिए ये सब धार्मिकता के चिन्ह हैं। तो हम सब धार्मिक हैं। स्वामी जी महाराज एवं संत महात्मा फरमाते हैं, धार्मिक तो हम जन्म से ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी शांति की खोज, हमारे परम लक्ष्य की प्राप्ति वे अभी तक हमें नहीं हुई। स्पष्ट है माता, मात्र धार्मिक होने से आपको मुक्ति की प्राप्ति, जन्म मरण से चक्कर का छुटकारा नहीं मिल सकता, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो धार्मिक हम हैं बेटा, हमें अब तक ये अनुभव हो गए होते, हमने अभी तक परम शांति परमानंद की अनुभूति कर ली हुई होती, तो फिर हमें जगह जगह भटकने की जरूरत न पड़ती, आराम से घर बैठते जो पाना था सो पा लिया। जब आदमी देवी घर पहुंच जाता है रात को, तो उसके बाद उसे कितना विश्राम मिलता है, अपने घर पहुंचना ही तो इस जीवन का लक्ष्य है। अभी तक हम अपने अपने घर नहीं पहुंचे हैं, शरीर का घर तो है, बेंगलोर है, दिल्ली है, कहाँ है कहाँ है, लेकिन आत्मा का घर जहाँ पहुँचना है, जिसकी प्राप्ति करनी है, वह घर अभी हमें अभी तक नहीं मिला। तो धार्मिक होने से हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, इससे यही स्पष्ट होता है ना देवी, मात्र धार्मिक होने से ये काम नहीं बनता। फिर देखो ना, धार्मिक तो हैं हम, धार्मिक होते होके भी यदि हमारा लक्ष्य वहाँ जाके परमात्मा की प्राप्ति होता बेटा, तो फिर भी हमारा काम बन गया होता। लेकिन मंदिरों में जाके, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, माता रानी के मंदिर जाते हैं, राम दरबार जाते हैं, इत्यादि इत्यादि, इन मंदिरों में जाके हमारी मांग भक्ति नहीं है, हमारी मांग परम शांति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, हमारी मांगे तो सांसारिक कामनाएं हैं। हम वह चीज़ें मांगते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, या हैं तो हम और चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए हम वहाँ जाते हैं। मानो देवी, परमात्मा से अधिक हमारे लिए वो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो परमात्मा से हम मांग रहे हैं। उस परमात्मा से, परमात्मा को मांगने की बजाय हम उनसे चीज़ें मांग रहे हैं, वह साध्य है, वह हमारा लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है, लेकिन हम उस लक्ष्य की बेटा प्राप्ति ना करके तो उनके माध्यम से उनको साधन बना लिया है, साध्य नहीं रहे हमारे, उनको साधन बना के तो हम जो चीज़ें हमें चाहिए वह मांग रहे हैं। जैसे घर के नौकर को एक चिट दे दी जाती है, जाओ बाजार जाके तो ये चीज़ें खरीद लाओ, ऐसे ही हमारा संबंध देवी सज्जनों परमात्मा के साथ है, शेमफुल, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए धार्मिक होते हुए भी देवी हम उस लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। संत महात्मा समझाते हैं, एक शब्द याद रखना देवी सज्जनों, मात्र धार्मिक होने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली। अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाइएगा, स्पिरिचुअलाइज योरसेल्फ। जैसे जैसे जीवन स्पिरिचुअलाइज होगा, ये धर्म मात्र पढ़ने की चीज नहीं है, ये धर्म जीवन में बसेगा, अपने कर्मों में उतरेगा तो काम बनेगा, यू विल बिकम स्पिरिचुअल। आप सिर्फ रिलीजियस नहीं रहोगे, तब आप स्पिरिचुअल बन गए। जब तक बिटिया स्पिरिचुअल नहीं बनोगे, तब तक आपको किसी कीमत पर भी परम शांति नहीं मिल पाएगी। यू मस्ट स्पिरिचुअलाइज योरसेल्फ, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाइएगा। कहाँ कमी रह गई है, आज थोड़ी सी चर्चा इसी बात पर करते हैं, ताकि वह कमी आगे से पूरी हो जाए। हमें कमी वो बड़ी पीला देती है, क्या हुआ, इतनी देर से मंदिरों में जा रहे हैं, इतनी देर से रामायण जी का पाठ कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि, इतनी देर से गीता जी का रोज एक अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन हम हैं तो वहीं के। क्या चिन्ह है अध्यात्मिकता के। हम धार्मिक होते हुए भी माता, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि हम संसारी हैं तो गलत नहीं है। हम धार्मिक एक लेबल सा लगा हुआ है, लेकिन हम वास्तव में संसारी हैं। संत महात्मा फरमाते हैं, ना भाई, अध्यात्मिक बनो तो आपको लाभ होगा, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कौन होता है अध्यात्मिक? बड़ी बड़ी बातें माता नहीं करते। मुक्ति किसने देखी है? मरने के बाद मुक्ति मिलेगी किसने देखी है? बात तो इस जन्म की है कि इस जन्म में हमें अध्यात्मिक होने से क्या लाभ होता है, अध्यात्मिक बनने से क्या चिन्ह हमारे अंदर प्रकट होते हैं, देखना तो ये है। यदि यहां जिंदगी चिंतित है, भयभीत है, यहां तनावपूर्ण जिंदगी है, तो आप सोचते हो वहां जाके आपको परम शांति मिल जाएगी, तो ये असंभव है, ये नहीं होता। यही आपको अपने मन को ट्रेन करना है, अपने मन को परिवर्तित करना है, अपने मन को पवित्र करना है, अपने मन को रोग रहित करना है, तभी जाके वहां भी आपको जो परम शांति, जो जीवन मुक्ति आप यहां प्राप्त कर चुके हैं, वहां जाके भी आपको प्राप्त होगी, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जिसे परमात्मा का घर कहा जाता है। एक बात याद रखो, हम सब यहां पर नाम के उपासक बैठे हैं, अतएव सब बात चीज जो भी है वह नाम संबंधी ही की जाएगी। क्यों? एक लाइन पकड़ ली है हमने, एक मार्ग हमने पकड़ लिया है, हम भटकना नहीं चाहते। मार्ग उसे ही कहते हैं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है, जो लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता उसको भटकना कहा जाता है। वह भटकना हमने बंद कर दी हुई है, हमने एक मार्ग अपना लिया हुआ है कि हमने स्वामी जी महाराज ने जो हमें नाम दान दिया है, अब उस नाम की उपासना हमें करनी है, ये हमारा निश्चित मार्ग है। आध्यात्मिक कौन है? जिसका सिमरन बिटिया 24 घंटे चलता रहे, जिसे 24 घंटों परमात्मा याद रहे, वह आध्यात्मिक है। बस इस जीवन काल में इतना ही काम है बेटा, मेक हिज रिमेंबरेंस कॉन्स्टेंट, इनसेसेंट रिमेंबरेंस, अखंड रिमेंबरेंस, अखंड स्मरण जिसका बना रहे, उसे समझिएगा कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक है। अभी तक संभव क्यों नहीं हुआ? जाप तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक, माता आप बातें ना करो, इधर देखो मेरी तरफ ध्यान से सुनो, यही आप मंदिरों में करते हो, यही आप यहीं कर रहे हो, तो फिर क्या लाभ हुआ? तो स्वामी जी महाराज के शिष्य तो नहीं हो पाए आप, साधक तो नहीं आप बन पाए। मेहरबानी करके साधक बनो, तब कुछ मिलेगा, तब स्वामी जी महाराज कुछ देंगे आपको। सिमरन में क्या कठिनाई रही है? हम राम राम माला लेके जपते हैं, स्वामी जी महाराज ने कहा हुआ है, माला उसी वक्त दे देते हैं, माला लेके तो राम राम जपिएगा, बहुत अच्छी बात है। आप स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं, मैं भी करता हूँ, जैसे आप करते हो वैसे मैं भी जप करता हूँ। उंगलियों पर जप तो राम का हो रहा है, जप तो राम के नाम का हो रहा है, लेकिन सिमरन संसार का हो रहा है, यही हम मर खा जाते। इसलिए जप हमारा मैकेनिकल जप ही रह जाता है, वह सिमरन में परिवर्तित नहीं होता। बेटा आज घर जाके करके देखना, प्रैक्टिस, अभ्यास करो, अभ्यास करो, जन्म जन्मांतर भी ये अभ्यास करके वह लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, तो इसे महंगा ना मानिएगा, बहुत सस्ता है। इसका अभ्यास कीजिएगा, जिसका देवी नाम जप रहे हो उसे ही याद कीजिएगा, ये सिमरन बन जाएगा। जब आपको कहा जाता है मन ही मन राम राम जपिएगा, मन से राम राम जपिएगा, तो इसका अभिप्राय यही है ना कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, मात्र फिजिकली नहीं, मन से भी वहीं बैठो। कई दफ़ा बच्चे लोगों, टीचर कुछ बोलता है, समझाता है, और आपको देखता है कि आप वहाँ नहीं हो, तो आपसे पूछता है, बेटा मैं अभी क्या बोल रहा था, तो आप झट से कहते हो, एक्सक्यूज मी सर, आई वॉज नॉट हेयर। मानो फिजिकली तो हम हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और गया हुआ है। ये जब ये कहा जाए कि मन से राम राम जपो, तो इसका अर्थ ये है कि तन एवं मन तन से तो आप जाप कर रहे हो, उंगलियां तो राम राम बोल रही हैं, जप रही हैं, माला का मन का तो आगे फिर रहा है, लेकिन मन का कहीं और घूम रहा है। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो इसे सिमरन कहा जाता है। दीदियों, आज से करोगे तो कल से आपको इसका लाभ विदित होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा इसके लाभ का। सिमरन इज सो इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट सिमरन? सिमरन मेरी माताओं उसी का होगा जिससे प्रेम है। मोटी मोटी बातें ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आपकी सेवा में अर्ज कर रहा है, इनको पल्ले बांध लो। सिमरन किसका होगा? जिससे प्रीति है। प्रीति संसार से तो बिन किसी प्रयास के संसार आपको याद आता रहेगा, आप भूल नहीं पाओगे। अभी हाल हमारा यही है, संसार बिन बुलाए याद आता है। परमात्मा को याद करना पड़ता है, याद दिलानी पड़ती है, सत्संग में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तब जाके तो परमात्मा की याद आती है। तो याद किसकी आएगी? जिससे प्रेम है। अपना प्रेम, अपनी प्रीति संसार से तोड़ के परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता। मैं इसको ऐसे अर्ज करता हूं आपसे, आप अपनी प्रीति परमात्मा से बढ़ाते जाइएगा, संसार से अपने आप टूटती जाएगी। परमात्मा से अनुराग, परमात्मा से ममता आप बढ़ाते जाइएगा, संसार से ममता, राग इत्यादि, मोह इत्यादि अपने आप टूटते जाएंगे, अपने आप घटते जाएंगे और अंततः खत्म हो जाएंगे। प्रीति की रीत जानते हो ना? जहां प्रीति होती है बेटा, वहां कोई ना कोई आपको संबंध बनाना पड़ता है। आज से अभी यहां बैठे बैठे मन की बट परमात्मा से कोई नाता स्थापित कर लो। पति बना लो, पिता बना लो, कुछ भी बना लो, आज संबंध बना के जाना तो प्रेम करना बहुत आसान हो जाता है। आपने परमात्मा को पुत्र बना लिया, तो पुत्र बना लिया मानो आपको अब अधिकार है परमात्मा को अपनी गोद में बिठाने का। पुत्र जो बना लिया आपने, आप मां बन गई, बाप बन गए। यदि आप पुत्र बन गए तो आपको अधिकार है परमात्मा की गोद में बैठने का। तो है ना महत्व कि कोई संबंध परमात्मा के साथ स्थापित कर लीजिएगा तो प्रेम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके अनुरूप आप परमात्मा से व्यवहार करोगे। यदि आपने अपना पति बना लिया है तो फिर उसी तरह से परमात्मा के साथ आपको व्यवहार करना है। पुत्र की तरह नहीं, बाप की तरह नहीं, मां की तरह नहीं, पति की तरह व्यवहार करना होगा। स्वामी बनाया है, मालिक बनाया है, तो आपको नौकर की तरह परमात्मा के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, जैसे एक नौकर नौकरी करता है। तो संबंध का बेटा है ना महत्व। प्रेम करना चाहते हो तो परमात्मा के साथ कोई नाता स्थापित कर लो तो बहुत आसान सब कुछ रहेगा। परमात्मा के साथ ममता हो जाएगी तो क्या होगा? आइए देखें। आपको व्यक्तिगत क्या लाभ होगा? यदि पारिवारिक चीज हो गई है तो परिवार का क्या लाभ होगा? परिवार को क्या लाभ होगा? मैंने अर्ज करी ना आपसे, मात्र धार्मिक नहीं रहोगे, आध्यात्मिक हो जाओगे। जब सिमरन शुरू हो जाएगा, सिमरन बढ़ता जाएगा तो आप धार्मिक नहीं, आप आध्यात्मिक हो जाओगे। आपके जीवन में क्या अंतर आएगा? और यदि यही चीज परिवार में आ जाती है, परिवार राम राम जपने वाला आध्यात्मिक हो जाता है, तो संत महात्मा कहते हैं वह परिवार शिव परिवार बन जाता है। इस शिव परिवार क्या हुआ? भगवान शिव का परिवार। देवियों सज्जनों, ध्यान से सुनो, ऐसा परिवार निर्मित करना, ऐसा परिवार बनाना हम सबका कर्तव्य है। कैसे बनेगा? सिमरन इंसिस्टेंट करते जाओगे, परिवार का एक सदस्य फिर देखते देखते और सदस्य भी इसी प्रकार लग जाएंगे तो आपका परिवार शिव परिवार लग जाए बन जाएगा। क्या विशेषता है शिव परिवार की आप जानते हो ना, भगवान शिव का स्मरण युगों युगांतरों से अखंड चल रहा है, अभी तक उनका सिमरन कोई तोड़ नहीं सका। जैसे आप राम राम जपते हो वैसे भगवान शिव राम राम जपते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती, उनकी आंखें अर्धनीलित रहती हैं, ऐसे चेहरा हर वक्त मुस्कुराता, ये सिमरन के चिन्ह है, ये परमात्मा से संबंध के चिन्ह है। हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, अर्धमीलित आंखें मानो हर वक्त समाधिष्ट रहते हैं। ये उपलब्धि उन्होंने अकेले जंगल में जाके पहाड़ में जाके प्राप्त नहीं की, पार्वती को साथ रख के परिवार को साथ रख के ये उपलब्धि लाभ की है। मानव देवी भगवान शिव का परिवार आपको अपने जीवन से सिखा रहा है, परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपने दुकानदारी कारोबार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अपनी नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ाई छोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये सब कुछ करते हुए सिमरन को बना के रखिएगा तो आपका परिवार शिव परिवार बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकेगा। अब देखो क्या और विशेषताएं हैं शिव परिवार की। भगवान शिव के गले में नाग देवता है, इनका वाहन पहले देखो, इनका वाहन नंदी है, मां पार्वती का वाहन शेर, दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन, दोनों साथ साथ रह रहे हैं। शिव परिवार की विशेषताएं क्या हैं? निर्वैरता, किसी का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता, कोई वैर नहीं, कोई घृणा नहीं, सब परमात्मा परमात्मा दिखाई देते हैं। आप सिमरन के लिए कहते हो ना, व्हाट यू थिंक ऑफ दैट यू बिकम। सिमरन जिसको जितना याद करोगे आप उसी के अनुरूप बन जाओगे, परमात्मा के गुण आपके अंदर, जितना अधिक परमात्मा का स्मरण करोगे उतने अधिक गुण परमात्मा के आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, तो दुर्गुण दूर होने शुरू हो जाओगे, आपका मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, रोग रहित हो जाएगा, विकारों रहित हो जाएगा, दुर्गुणों रहित आपका मन हो जाएगा। शिव परिवार बिल्कुल ऐसा ही है, दोनों इकट्ठे रह रहे हैं, गाय बैल कहो बुल कहो और शेर, दोनों एक ही स्थान पर इकट्ठे रह रहे हैं। भगवान शिव के गले में देवी नाग देवता हैं और कार्तिक स्वामी का वाहन मोर, जहां मोर होता है, जहां मोर की आवाज होती है वहां सर्प नहीं हुआ करते, यहां दोनों ही विराजमान हैं, ये शिव परिवार है। और देखो गणेश जी महाराज का वाहन चूहा मूषा, भगवान शिव के गले में नाग देवता है, नाग देवता सर्प कोबरा चूहे को खा जाता है, वो भी सुरक्षित बैठा हुआ है, उसको भी कुछ नहीं, ये शिव परिवार है। आध्यात्मिक जीवन जीने वाला परिवार इस प्रकार से शिव परिवार बन जाएगा। इसी प्रार्थना के साथ देवी सज्जनों समाप्त करने की इजाजत दीजिए, वह समय हो गया होगा। अपना जीवन मात्र धार्मिक ही न बना के रखिएगा, आगे बढ़िएगा, ऊंचे चढ़िएगा, सोर हाई ऊपर बढ़ते जाइएगा, चढ़ते जाइएगा। छोटी छोटी बातों पर नाराज होने वाले साधक नहीं हुआ करते माता, आप करोड़ की संख्या में जाप कर लो आपको कभी परम शांति नहीं मिल पाएगी। क्यों? आपका मन अभी तक साफ नहीं हुआ, आप धार्मिक तो हो, दूसरों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए जाप तो करते हो, लेकिन आपने अपने मन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया। यू हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रोल योर माइंड। और जब तक माइंड कंट्रोल नहीं होगा साधक जनों, तब तक आप कुछ भी कर लो, आपको परम शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। किसने अमृतवाणी गाई है? मुझे अमृतवाणी गाने का नहीं मौका मिला। किसने भजन गाया है? मुझे भजन गाने का मौका नहीं मिला। यदि इन्हीं बातों में पड़े रहोगे तो कभी ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये स्वामी जी महाराज के साधकों के चिन्ह नहीं है, ये तो सामान्य संसारियों के चिन्ह है। 20-20 साल हो गए दीक्षा लिए हुए, लेकिन एक पग भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा, तो सोचें स्वामी जी महाराज को कितना कष्ट होता होगा। इस बात को सोच सोच के संसार तो इकट्ठा कर रहे हो आप, संसारिकता तो और इकट्ठी हो रही है, लेकिन जिसे इकट्ठा करना चाहिए वह तो कुछ नहीं हो रहा। जो आपकी अपनी पूंजी है वह तो कुछ नहीं इकट्ठी हो रही, जो आपके साथ जाने वाली है वह तो इकट्ठी बिल्कुल नहीं हो रही। जो यहां रह जाएगी, मर जाएगी, मिट जाएगी इस शरीर के साथ ही, वह तो बहुत इकट्ठी हो रही है। इसी को संसारिकता कहा जाता है। नाम की पूंजी इकट्ठी करो, सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी करो, संतोष धन इकट्ठा करो, सद्गुणों की पूंजी इकट्ठी करो। माता कब इकट्ठी करोगे? मौत किस किस के सिर पर मंडरा रही है कोई नहीं जानता। कब इकट्ठी करोगे? असली चीज कब इकट्ठी होगी? कब ऐसी चीज इकट्ठी होगी जो हमारे साथ परमात्मा के दरबार में जाएगी? ये सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। एक दिन का भी इसका ना कोई आज तक लेके गया है, ना कोई लेके जाएगा। तो फिर यही कहना होगा ना, खाली हाथ आए थे स्वामी जी महाराज के शिष्य, बन के भी खाली हाथ ही चले गए। ये जीवन की सफलता तो नहीं है। मजा तो तब है, खाली हाथ आए थे और नाम की कमाई से सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी करके, सद्गुणों की पूंजी इकट्ठी करके, अपनी झोलियां भर के, अपनी मुट्ठियां भर के तो परमात्मा के दरबार में जाइएगा, तो स्वामी जी महाराज को प्रसन्नता होगी। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करती रहे, अध्यात्म आपको शब्द याद रखना, युवको शब्द याद रखना बेटा, आपकी अभी आयु बहुत है। अध्यात्म क्या बनाएगा आपको? दुख प्रूफ। घड़ी होती है ना वाटर प्रूफ, ऐसे अध्यात्म देवी आपको दुख प्रूफ बनाएगा, शोक प्रूफ बनाएगा। नो सारो, विषाद नहीं जैसे अर्जुन को हुआ था। अर्जुन बेचारा अध्यात्मिक नहीं था, इसलिए विषादग्रस्त हो गया। आप अध्यात्मिक बनो, अध्यात्मिक बनोगे तो आप दुख प्रूफ हो जाओगे बेटा, शोक प्रूफ हो जाओगे, चिंता प्रूफ हो जाओगे, वैर द्वेष प्रूफ हो जाओगे, भय प्रूफ हो जाओगे, हर प्रकार का भय खत्म हो जाएगा। कब? जब आपका जीवन आध्यात्मिक बनेगा। शुभकामनाएं मेरी माता सज्जनों, मंगल कामनाएं। परमेश्वर की महती कृपा है, मेरे बाबा का पुण्य प्रताप है, इनकी कमाई का लाभ लो देवी सज्जनों। इन्होंने इतनी बड़ी चीज, अनमोल चीज हमें दी है, मानो ढंग दिया है ऐसा कि आप तत्काल इसी वक्त धार्मिक से आध्यात्मिक बन सकते हो, रिलीजियस से स्पिरिचुअल बन सकते हो, और स्पिरिचुअल बनना ही मेरे प्रभु इस जीवन का लक्ष्य मानिएगा। आप सोचते हो बहुत बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कुछ और भी उससे बड़े होते होंगे, इस ऐसा बनने से आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो मेरी माताओं सज्जनों देखो, मेरी माता सिर मार रही हैं कि नहीं। इसके लिए और ही कुछ आपको करना है जो स्वामी जी महाराज ने आपको समझा रखा है। मत सोचिएगा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं नौकरी छोड़ो, कारोबार छोड़ो और यही काम करो, नहीं। स्वामी जी महाराज की साधना है मुख से जपिए राम और हाथ से करिए काम। पहले रखा है मुख से जपिए राम और हाथ से करिए काम। काम तो आप कर रहे हो लेकिन मुख से राम को निकाल दिया हुआ है। हृदय से राम को आपने निकाल दिया है तो फिर मजदूरी तो मिलती रहेगी लेकिन परमात्मा रूपी प्यार कृपा का पुरस्कार नहीं मिल पाएगा। संसारी मजदूरी बेटा पैसों वाली, परमात्मा की नौकरी करोगे, परमात्मा की मजदूरी करोगे तो वह मुक्ति देता है। बड़े आदमी की नौकरी बड़ी चीज ही देगी, छोटे आदमी की नौकरी तो पैसे ही देती है। किसी को 1,000 मिलता है तो किसी को 20,000 मिलता है, पर मिलते पैसे ही हैं बेटा। इसे मजदूरी कहा जाता है, संसारी मजदूरी। परमात्मा की मजदूरी कहोगी तो फिर परमात्मा अपने बड़प्पन के अनुसार, अपनी महानता के अनुसार आपको मजदूरी देगा। और उसकी मजदूरी है उसकी कृपा, उसका प्यार, मुक्ति, मोक्ष। जन्म मरण का चक्कर सदा सदा के लिए खत्म। परमानंद देगा आपको, परम शांति आपको देगा। ये परमात्मा के घर की, बड़े आदमी की नौकरी है ना, बड़े आदमी की नौकरी तो फिर बड़े आदमी मजदूरी भी इसी तरीके। हम हैं नौकर बाबा तेरे दरबार के, बदले मजदूरी हमें अपना प्यार दे, अपना दीदार दे। तो यही साधक जनों समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा इसी विनती के साथ कि खूब राम राम जपिए, प्रेम पूर्वक राम राम जपिए, इसे सिमरन बना के जपिएगा। नाम जपिए पर सिमरन इसे बना लीजिएगा। अति शुभकामनाएं सबको, मंगल कामनाएं, कोटि कोटि प्रणाम आप सबका। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन, आराम का दिन, और आप यहाँ आए हैं, पर इस जैसा आराम और क्या होगा? तनिक सोचना दे दिया सज्जनों, वह आराम है तो ये विश्राम है। भगवान शिव अपने मुख में सदा राम रखते हैं तो संसार रूपी विष को पीते जाते हैं। कहते हैं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो इस विष को राम के साथ मिला के तो विश्राम बना लेता हूँ। वाह भगवान शिव, आप जैसी भक्ति, आप जैसी नाम में आस्था हमें मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। सुना आपने भगवान शिव क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे मुख में सदा राम रहता है, ये संसार तो विष है ना देवी, ये संसार जहर है और हर एक को पीना पड़ता है, इसके पिए बिना निर्वाह नहीं। भगवान शिव कहते हैं मेरे जीवन से सीखो, मुख में राम रखोगे तो संसार का विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मेरी तरह आप इसे विश्राम बना लोगे। विष प्लस राम, विश्राम। परमात्मा वह विश्राम आप सबको प्रदान करे। कोटि कोटि मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। हार्दिक